मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 10 अगस्त 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दीपक पांडे, आपका गांव है जगतपुर, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। आशी वाजपेयी, आप भोपाल, मध्य प्रदेश से हैं। सुरेश कुमार गुर्जर, जयपुर, राजस्थान से। अभिषेक जांगिर, आप भी जयपुर, राजस्थान से ही हैं। राज सिंह, आपका गांव है पलियार, जिला बांका, बिहार से। और विक्रम कुमार, आपका गांव है मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से। तो दीपक, आशी, सुरेश, अभिषेक, राज सिंह और विक्रम, आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को कुछ आप सबको सूचनाएं दी जाती हैं। तो कुछ सूचनाएं हैं और सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार दोनों दिन डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन कल आप लोगों को प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेगी, अखबारों की कतरनें पढ़ने को मिलेंगी। उसके साथ ही साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र के 4 आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे, 2 योजना से हिंदी इंग्लिश और 2 कुरुक्षेत्र से हिंदी इंग्लिश। इसके साथ ही आप लोगों को एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है, और क्वेश्चंस का सिलेक्शन, टॉपिक का सिलेक्शन कह लीजिए, और उसकी फ्रेमिंग इस तरह से की जाती है ताकि आपको मेंस के प्रिपरेशन में मदद मिल सके। तो दोस्तों, वो अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जाता है और साथ ही हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बीच बीच में मेल आते रहते हैं और कल भी मुझे कुछ ऐसे मेल मिले हैं जिसमें स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें भी स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है, नाम ही है स्पेशल, ये बेसिकली केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो यहां 15 दिन की क्लास अटेंड करके जाते हैं। और उसका देखिए एक बहुत ही वैलिड रीजन है। रीजन ये है कि ये जो 50 लेक्चर्स उनको दिए जाते हैं, मतलब साल भर तक उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, उसके 2-3 कारण है। पहला तो ये है कि जो कुछ भी वो यहां से सीख कर गए हैं, जैसे होता है ना कि छत ढाल दी गई, अब उसमें सीमेंट उमेंट लगा दिया गया, तो उसकी तराई की जाती है, उसमें पानी लगातार डाला जाता है ताकि वो छत मजबूत हो सके। तो यूं कह लीजिए कि ये जो एक साल तक 50 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो तराई का काम करते हैं ताकि जो सीख कर गए हैं कम से कम वो मजबूत हो सके। दूसरी बात यह कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के जो टॉपिक रखे जाते हैं और जहां से शुरू किया जाता है स्पेशल ऑडियो गाइडेंस को और जिस तरीके से उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उसमें जिस तरीके से विश्लेषण होता है, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उस स्टूडेंट ने 15 दिन की क्लासेज अटेंड की हो। अगर वो अटेंड नहीं कर सका है तो मान करके चलिए, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा फायदा उसका नहीं उठा सकेगा। तो आधी अधूरी जानकारी से तो या आधे अधूरे फायदे से तो बेहतर है दोस्तों, जहां तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सवाल है, कि वो जानकारी हो ही ना, क्योंकि सिविल सर्विस में आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक जानकारी होती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स से जो इसके प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और इसे पाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी इस इच्छा को पूरी करने में हम लोग असमर्थ हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं किसी एक विषय पर बात ना कह करके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जो कल सरकार ने लिए हैं, चाहे वो विधेयक के रूप में लिए हों, राज्यसभा या लोकसभा या संसद के दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया हो या फिर कैबिनेट ने लिया हो, मैं उन सबको एक साथ आपके सामने रख रहा हूं। और ये जितने भी निर्णय की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं, ये मानकर चलिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इस मायने में कि कोई तो अपने आप में पूरी तरह इंपॉर्टेंट है और कोई कंटेंट के रूप में इंपॉर्टेंट है, यानी कि तथ्य के रूप में इंपॉर्टेंट है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका उल्लेख कर सकें, राइट। तो इसीलिए आज हम एक विषय पर बात न करके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात करेंगे। न्यूज आपने सुनी है फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा जो विधेयक जो पेश किया गया है और पारित हुआ है वो है अभी राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक। यह देश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि भारत सरकार खेलों के विकास के लिए क्या कर रही है उसके लिए ये एक कंटेंट है। और फिर अभी जब विधेयक पारित हो जाएगा पूरी तरह से, मतलब लागू हो जाएगा, तब फिर उसके और तथ्य मुझे लगता है कि सामने आएंगे। फिर आपको देखना यह है कि ये जो राष्ट्रीय खेल विधेयक जो पारित हुआ है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, इसका खेलों पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या क्या होना चाहिए। इसमें जो एक दो बात बड़ी अच्छी कही गई है, देखिए, एक तो ये मणिपुर में खुलेगा, आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट खेल के मामलों में बहुत आगे है, तो मणिपुर में यह खोला जाएगा। दूसरा, न्यूज में भी ये बात बताई गई कि इसके जो कुलाधिपति होंगे वो खेल जगत के ही व्यक्ति होंगे, ऐसा नहीं कि वहां किसी ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया जाएगा। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स लगातार ताक में रहते हैं कि ये जगह भी हम हथिया लें, सरकार कितना उसे रोक पाएगी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि प्रोविजन किया गया हो विधेयक में कि इसका जो कुलाधिपति होंगे वो खेल जगत के ही प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। और हमारे जो खेल मंत्री हैं राठौर जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, और ये सच है, हमारे देश में बहुत प्रतिभा है खेल के लिए, लेकिन दो चीजों की बेहद कमी है। एक तो धन की बहुत कमी होती है, हम उन्हें जो डाइट दिया जाना चाहिए, जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, कैरियर के प्रति जो निश्चिंतता उनमें होनी चाहिए, उनके परिवार वालों को जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं दे पाते। और दूसरा होता है कि हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज हासिल कर चुकी है, तो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण भी हमारा प्रशिक्षण उतना पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी ने कहा है कि इसकी भी कमी नहीं होने दी जाएगी, हम सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। राइट फ्रेंड्स, जो दूसरा जो निर्णय है वो है कि राज्यों को अब रियायती दर पर दालें दी जाएंगी, दलहन जैसे कि मूंग है और आपके मसूर है और आपके चना है। उसका कारण है हमारे लोगों में पोषण आहार की स्थिति को ठीक बनाना, उन्हें पोषक तत्व उपलब्ध कराना, खासकर प्रोटीन। और इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो जो थोक मूल्य जो बाजार में रेट होते हैं उससे 15 रुपए कम कीमत पर दाल वो खरीद सकते हैं, तो केंद्र इसके लिए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराएगी, ताकि फिर हो सकता है कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत वो दाल गरीबों को पहुंचा सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पोषण की दृष्टि से। तीसरी एक जो बहुत बड़ा निर्णय है मित्रों, प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर के है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये सन 2004 या कुछ ऐसा शुरू किया गया था, शायद सन 2004 में ये शुरू किया गया था, एग्जैक्ट थोड़ा सा देख लीजिएगा मित्रों, मुझे दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाया गया था और अब इसे आगे भी बढ़ा दिया गया है। और गांव के विकास में इस प्रधानमंत्री सड़क योजना की बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका रही है, बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका। मतलब गांव को अगर आप शहर से या मुख्य उनसे जोड़ देते हैं, तो मान करके चलिए कि आपने गांव में एक प्रकार से विकास की धारा बहा दी, क्योंकि जैसे ही आप लिंक्ड होते हैं, मतलब जो परिवहन है बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे ही सारी चीजों में चौतरफा परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। गांव वालों को मार्केट मिलने लगता है, एजुकेशन की फैसिलिटी, क्योंकि वो कस्बे शहर जा सकते हैं, हेल्थ की फैसिलिटी मिलने लगती है, शहर के साथ या कस्बों के साथ इंटरेक्शन होने से उनकी चेतना में बदलाव आना शुरू हो जाता है, उनमें सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलने लगती है, सरकारी अधिकारी भी फिर वहां टूर वगैरह पे जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां सड़कें हैं। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना को बढ़ा दिया गया है, और इस टॉपिक पर आपको तैयारी इस रूप में करनी चाहिए कि इसकी क्या भूमिका रही है हमारे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। एक जो विधेयक में संशोधन किया गया है मित्रों, 3 तलाक विधेयक में संशोधन किया गया है, लोकसभा पारित कर चुकी थी, राज्यसभा ने कुछ संशोधन सुझाए थे, आज अखबारों में भी दिया हुआ है कि पहले जमानत की व्यवस्था नहीं थी, तो अब कुल मिलाकर के ये कर दिया गया है कि नहीं, जब 3 तलाक के तहत शिकायत होगी तो जमानत की भी उसमें व्यवस्था होगी, लेकिन वो जमानत की व्यवस्था कैसे होगी उसका एक प्रोविजन किया गया है। ज्यादा अच्छा हुआ कि जब ये विधेयक पूरी तरह से पारित हो जाएगा तब हम इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जरूर जानना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, एक जो निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 एडिशनल बटालियन स्वीकृत की गई है, 4 एडिशनल बटालियन। देखिए, आपकी सुरक्षा जो सिक्योरिटी है वो बकायदे प्राकृतिक आपदा के समय की जो सुरक्षा है वो बकायदे आपके सिलेबस में है। प्रश्न भी अक्सर मैंने देखा है कि एक प्रश्न इस पर पूछ लिया जाता है, क्योंकि जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, आतंकवाद वगैरह, इस पर प्रश्न आते हैं। जो आउटर सिक्योरिटी है, जो हमारे बॉर्डर पर है, उस पर भी प्रश्न आ जाते हैं, समुद्री सुरक्षा पर भी आ जाते हैं, और इसीलिए एक प्राकृतिक आपदा पर भी वो रखते हैं ताकि वो सुरक्षा का जो पूरा दायरा है वो कवर हो सके। तो ये एक नया कंटेंट है कि 4 अतिरिक्त बटालियनें बनाई गई हैं और इन्हें जो तैनात किया जाएगा, उनके राज्यों के नाम भी बकायदे न्यूज में थे, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। अगर हम दिल्ली को छोड़ दें तो फिर पाएंगे कि ये जो तीनों राज्य हैं बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पर खासकर बरसात के दिनों में भूस्खलन, बादल फटने, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उनकी मदद के लिए ये जो बटालियन है ये तैनात की जाएंगी। जो आखिरी जो खबर है मित्रों, वो है विश्व जैव ईंधन दिवस को लेकर। कल अगर आपने डीडी न्यूज सुना हो तो डीडी न्यूज में इस पर एड आ रहा था, एड के फॉर्म में जैव ईंधन के बारे में आ रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लगभग मैं समझता हूं कि 1.5-2 महीने हुए होंगे जब राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति घोषित की गई थी, और उसके तहत जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो एथेनॉल जो बनाया जाता है, खासकर वो गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है, तो उसका दायरा सरकार ने बढ़ा दिया था कि आप स्टार्च से भी बना सकते हैं, चुकंदर से भी बना सकते हैं, दूसरी और जो चीजें हैं उससे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। और अगर हमने सच पूछे तो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं, अगर उनके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए तो देखिए 2-3 तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक तो इससे जो प्रदूषण है वो कम होगा, और भारत को भी पेरिस सम्मेलन के तहत अपने प्रदूषण की मात्रा को बहुत कम करना है। दूसरा जो इसका लाभ होगा कि जो हम पेट्रोलियम पदार्थ, आपको मालूम है कि 80% तो बाहर से ही मंगाते हैं, लगभग 3/4, और उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, तो हमारी विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, उस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी। आज मैं जो आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें 2 आर्टिकल्स का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा फ्रेंड्स। एक है रिफॉर्मिंग द सिविल सर्विस, ये हिंदू का आर्टिकल है, अमिताभ भट्टाचार्य जी का, आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विस की जो स्थिति है, और वैसे भी आपके सिलेबस में है, लेटेस्ट आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा दैनिक जागरण का है प्रदीप सिंह जी का, राष्ट्रहित पर भारी पड़ते दलगत हित। ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी पर है, पॉलिटिकल साइंस पर नहीं है, पॉलिटी पर है, तो आपको इससे थोड़ी सी पॉलिटी समझने में मदद मिलेगी। और बाकी दूसरे आर्टिकल्स भी आपको दिए जा रहे हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 5 मित्रों के नाम हैं, संस्कृति गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, आलोक राज दुमका बिहार से, प्रीति मिश्रा, सोनल कहालकर भंडारा महाराष्ट्र से, और प्राची छतरपुर मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आप सबसे 2 दिनों की विदाई मांगते हुए इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।